करो।
नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एनी से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में आप कैसे वोट करते हैं, कोई भी उम्मीदवार कैसा चुनता है, यह कोई रहस्यमय प्रक्रिया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। भारत का मतदाता अक्सर चुनावी विश्लेषकों और एग्जिट पोल वालों को चकित करता आया है। क्या चुनाव में प्रेम जैसी कुछ अबूझ है जिसके चलते कई बार प्रेम प्रेमिका की तरह ही उम्मीदवार को भी पता नहीं होता कि उसने क्या चुन लिया है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुपस्थित जुड़े हैं। सर, मोबाइल नहीं पे स्वागत है आपका।
नमस्कार योगेश भाई।
सर, ये जो आज का विषय है, आप कैसा वोट करते हैं, और साथ में सर 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर यानी कि कल मतदान होने वाला है, और
जी
इसी को लेकर ये जो टॉपिक है, आप कैसे वोट करते हैं सर, कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए, हिंदुस्तान पर्वों का देश है
जी
और लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व है। इससे बड़ा पवित्र और पावन पर्व कोई है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में हिस्सेदारी करने वाली जनता जो 18 साल से ऊपर है, वह अपने भविष्य के साथ साथ अपने देश के भविष्य को, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को और दुनिया के स्तर पर हो रहे व्यवस्था के भविष्य को तय करती है। तो मतदाता जब मतदान करने जाता है तो पहले जो मतदान होता था उसका एक अलग प्रभाव होता था। उसमें वह जाते थे राष्ट्र के नाम पर मतदान करते थे, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मतदान करते थे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करते थे और व्यवस्था में समतावादी और समाजवादी व्यवस्था के लिए मतदान करते थे। परंतु आज जो सत्ता की राजनीति चल रही है देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर, अगर कह लीजिए जो सत्ता का ध्रुवीकरण हो रहा है, यह मतदाता के मानसिक स्थिति को बदला है और मानसिक स्थिति को इस एवज में बदला है कि मतदाता आज संकीर्ण सोच के आधार पर मतदान में हिस्सेदारी करने जा रहा है। वह अपनी सोच को बड़ा नहीं कर रहा है, वह देश के भविष्य को देख करके मतदान नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने संसाधनों और अपने अपने स्वार्थों को, हित को देख करके मतदान करने जा रहा है।
जी सर,
परंतु मतदाता को यह चाहिए कि जब वह मतदान करने जाए तो मतदान इस आधार पर करे कि हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है, मतदान इस आधार पर करे कि हमारे प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, मतदान इस आधार पर करे कि हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर खुशहाली कैसे आ सकती है, हर हाथ को रोजगार और हर हाथ को काम कहां से मिल पाएगा। आज भी आप देख लीजिए कि मतदान की स्वच्छता ही देश के अंदर आजादी और रोटी, शिक्षा और रोजगार लोगों को प्राप्त कर सकती है। परंतु यदि मतदाता स्वार्थ में घिर करके मतदान करेगा तो न हमें आजादी मिल सकती है, न हमें रोटी मिल सकती है और न ही लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, न व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि मतदाता मतदान करे, इसलिए मतदान करे, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, रोटी और आजादी हमें परिपूर्ण मात्रा में और अवसर की समता हमें भरपूर मात्रा में मिले।
सर, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होने वाला है, और इसको लेकर जब एक मतदाता घर के बाहर निकलेगा, मतदान करने जाएगा, तो क्या सोचकर जाएगा और क्या उसके दिमाग में क्या सोच रहेगी कि मध्य प्रदेश की किस तरीके से वो तस्वीर बदलना चाहता है, या क्या सोच रखता है?
देखिए, मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन है, वन डे इलेक्शन है, 17 नवंबर को ही है और 230 विधानसभा पे पूर्णतः कंप्लीट होने वाला है।
जी,
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो एक विशेषता कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि वहां पे ट्वाइस पार्टीज इलेक्शन से, दो ही दल वहां पे इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, तीसरा उभर कर क्या नहीं पा रहा है, तो वहां के मतदाता या तीसरे दल को पसंद नहीं कर रहे या तीसरे दल को लाना नहीं चाह रहे या अंदर से दोनों दलों का इफेक्ट हो गया है कि तीसरे दल को नहीं आने दिया जाएगा, यह समझना होगा। क्योंकि वहां पे जो तीसरे दल के रूप में छोटे छोटे पार्टियां काम कर रही है, हमें लग रहा है कि इन दोनों दलों के अपेक्षा सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं वहां पे, परंतु उभर के नहीं आ पा रहे। उभर के इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि मतदाता यह देख रहा है कि कौन प्रत्याशी ज्यादा धन खर्चा कर दे रहा है और धन के आधार पर मतदान कर जा रहे, परंतु यह ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है योगेश भाई, क्योंकि धन को जनधन हराएगा और धन को धन ही हराता है।
जी,
तो एक ना एक दिन सैद्धांतिक राजनीति आएगी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जब कल मतदाता मतदान करने निकलेगा तो मतदाता तो हर समय मतदान करते आए, लेकिन सबसे अपने को जो ध्यान देना है वो फर्स्ट टाइम वोटर पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए हम लोगों को यह कहना होगा कि वह मतदान करने जाए तो देश की और प्रदेश की मजबूती के लिए मतदान करे। वह मतदाता जो 18 साल का होता है, फर्स्ट टाइम होता है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार का होता है, रोजगार को लेकर के मतदान करे। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा का है, शिक्षा को लेकर के मतदान करे। उसके सामने जो चुनौती आती है कि हमारे देश के अंदर शांतिपूर्ण माहौल में, देश के अंदर राजनीति और धर्म का सांप्रदायिकरण न हो, इसको लेकर के मतदान करे। तो फर्स्ट टाइम वोटरों से अपना निवेदन है, आग्रह है कि सर्वप्रथम तो मतदान करने जाए, और मतदान करने जाए तो संकीर्णता से ऊपर उठ करके अपने स्वार्थों को त्याग करके देश को सामने रख करके मतदान करे, और उसके आधार पर जो है मतदान करने जाए, उसमें हिस्सेदारी करे। हिस्सेदारी इसलिए करे कि हमें मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। हिस्सेदारी इसलिए करे कि बार बार हमें जो सत्ता के माध्यम से लूटा जा रहा है, उस लूट से बचा जाए, और सत्ता की राजनीति से प्रेरित होकर के मतदान न करे, बल्कि एक स्वच्छ राजनीति से प्रेरित होकर के मतदान करे।
सर, एक अगर कोई मतदाता के घर पर कोई प्रत्याशी आकर उसकी पैर छूकर चला जाता है, तो क्या एक मतदाता उस प्रत्याशी के रूप में कुछ सहानुभूति से प्रभावित होकर मतदान करेगा? क्या अगर किसी मतदाता के घर से बाहर निकलता है जब मतदान करने के लिए, तो क्या कोई व्यक्ति द्वारा प्रभावित होकर मतदान करे? और एक मतदाता क्या सोचकर मतदान करता है या किसी से प्रभावित होकर मतदान करता है, और यह कहां तक आपको सही लगता है सर एक मतदाता के रूप में?
योगेश भाई, चुनाव के समय हर प्रत्याशी हर मतदाता का पैर छूता है, चाहे वो माफिया हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला हो, और चाहे लोकतंत्र की हत्या करने वाला हो। आप बता दीजिए कि कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो मतदाता का पैर नहीं छूता हो। लेकिन देखना होगा मतदाता को कि क्या यह प्रत्याशी वास्तव में सैद्धांतिक राजनीति का पक्षधर है, क्या यह प्रत्याशी वास्तव में जाति के राजनीति को नकार रहा है, क्या यह प्रत्याशी वास्तव में समाज शराब की राजनीति को नकार रहा है, क्या यह प्रत्याशी जब पैर छू रहा है तो वास्तव में जनता की सेवा के लिए छू रहा है। उसमें यह देखना होगा कि क्या यह प्रत्याशी जो लड़ रहा है, यह करोड़ रुपया खर्चा करके नहीं लड़ रहा है, तो इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए पैर छूना। और यह लोकतंत्र में कहीं लिखा नहीं है कि प्रत्याशी जाके मतदाता का पैर छुए न छुए। कौन कह रहा है? मतदाता तो नहीं कहता कि आप हमारा पैर छुए। मतदाता तो उसके सामने अपनी सवाल रख देता है कि हमारा ये गांव का प्रॉब्लम, इसको हल करो। ये तो ड्रामा करते हैं जो प्रत्याशी है, पैर छू करके ड्रामा करते हैं, सहानुभूति नहीं लेते हैं। यह एक प्रकार से ड्रामा करते हैं। भाई, इनको अपनी सहानुभूति की चिंता होती तो जीतने के बाद 5 साल गांव में क्यों नहीं जाते, जीतने के पास एक एक मतदाता से क्यों नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो मतदाता को इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसके उल्टा जाकर के वो पैर छूने आए तो प्रत्याशी का पैर छू लेना चाहिए कि भाई साहब, हम आपका पैर इसलिए छू रहे कि आप ऐसे ही दर्शन देते रहिएगा। तो ये प्रत्याशियों को जो पैर छूने की प्रथा है, ये गलत प्रथा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है, इससे न सहानुभूति मिलने वाली है न वोट मिलने वाला है। यह तो एक प्रकार का ड्रामा और नाटक है। मतदाता को तो देखना चाहिए कि प्रत्याशी में कितना दम है, और ये प्रत्याशी किस आधार पर चुनाव लड़ रहा है, यह जनता के लिए कितना लड़ा है, जनता के लिए कितना काम किया है। और मतदाता को तो चाहिए कि पैरा सूट से आने वाले प्रत्याशियों को हरा दे, दूसरा की दल बदल करने वाले प्रत्याशियों को हरा दे, तीसरा की करोड़ रुपया खर्चा करने वाले प्रत्याशियों को हरा दे, और चौथा की जो दलीय सीमा में बंध करके गुलामी को स्वीकार करे है उनको हरा दे, और एक उसके जगह पर सैद्धांतिक राजनीति करने वालों को एक विकल्प के रूप में जिताए, ताकि मध्य प्रदेश के अंदर एक विकल्प तैयार हो और पैर छूने वाली प्रथा समाप्त हो, बल्कि मतदाता के दर्शन करने वाली प्रथा चालू हो।
जी सर। सर, क्या एक जो राजनीतिक पार्टियां जो अपना एक चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी करती है, उसको सर एक मतदाता किस रूप में समझ पाता है और फिर मतदान करता है, या मैनिफेस्टो को किस तरीके से मतदाता समझ पाता है सर?
हाँ, मैनिफेस्टो जारी करना, घोषणा पत्र देना, वचन पत्र देना, यह राजनीतिक दलों का अधिकार ही होना चाहिए, वो देते भी है, परंतु अब इसका औचित्य खत्म कर लिया है राजनीतिक दलों ने। आज राजनीतिक दल कितने भी बड़ा घोषणा पत्र बना के दे दे, कितने भी अच्छा घोषणा पत्र बना के दे दे, मतदाता कहता है कि अरे ये फालतू का काम है, चुनाव में बनाते इसे खूना दाना कुछ नहीं है, और करते भी नहीं। मतदाता तो पहले तो घोषणा पत्र पे विश्वास करता था ना। आज आप देख लीजिए कि अब हमको तो अभी तक नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि नहीं किया, हमें नहीं लग रहा है कि किया है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है 156 पेज का जारी किया है। आप पत्रकार है, उठा के देखिए कि 156 पेज में कितनी योजनाएं लिखा है, क्या ये 5 साल में पूरी कर लेंगे अगर सरकार बनती है तो, और क्या उसकी समय सीमा तय की है? ये क्या कहते हैं कि हमारी 5 साल की सरकार बनी है, हम 5 साल में घोषणाओं को पूरा करेंगे, और 5 साल आते आते कुछ करते होते हैं नहीं, कोई पत्र करते नहीं है। हमारा तो यह मांग है एक मतदाता के रूप में और एक विश्लेषक के रूप में कि चुनाव आयोग को चाहिए कि सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को पंजीकृत कर ले, जो निर्दल लड़ रहे उनके भी घोषणा पत्र को पंजीकृत करे, और जो छोटे छोटे दल है उनके भी घोषणा पत्र को पंजीकृत करे, और कहे उनसे कि भाई अगर आप सत्ता में आ रहे हैं, आप जीत रहे हैं या गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप इसको कितने दिन में पूरा कराएंगे हमको लिख कर दीजिए। अगर यदि नहीं लिख करके दे रहे हैं तो आपको हम निरस्त किया जाएगा, आपकी सदस्यता निरस्त की जाएगी, आपके दल के सरकार को निरस्त किया जाएगा, क्योंकि आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पहला धोखा तो राजनीतिक दल और सत्ता में आने वाले दल अपने घोषणा पत्र से ही जनता के साथ कर लेते हैं। तो अनिवार्य इस बात की है कि जनता जो है घोषणा पत्र पर न जाए, बल्कि जनता तो यह देखे कि कौन लोग काम कर सकते हैं, कौन नेता जनता के बीच में बैठ सकता है, क्योंकि सभी लोग घोषणा पत्र लेकर के आते हैं। अब तो घोषणा पत्र को यह वचन पत्र कह रहे हैं, और वचन पत्र को ये कहां से उठाए है, रामायण से उठाए है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। परंतु ये करते कहां है? कांग्रेस कहती है कि हमारा वचन पत्र है, परंतु वचन पत्र पे चलती नहीं है। वही दशा सत्ता पक्ष की भी रही है। तो इनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। मतदाता को घोषणा पत्र पे जाकर के नहीं, बल्कि मतदाता को तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, शिक्षा चिकित्सा और रोजगार के लिए, और आजादी एवं रोटी के लिए मतदान करना चाहिए, और देश और दुनिया भर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए, प्रत्याशी के छवि को देख करके मतदान करना चाहिए।
जी सर। सर, स्थानीय मुद्दे हो, राज्य मुद्दे हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, और इसको देखते हुए एक मतदाता इसको कितना समझ पाता है और फिर मतदान करता है सर?
ये प्रदेश का चुनाव इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप नहीं होता है इस पे अंतर्राष्ट्रीय, बल्कि जनता तो इस बात पे ध्यान देती है कि हमारे स्थानीय मुद्दों को किस प्रकार से हल किया जा रहा है, और राजनीतिक दल भी वही कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, उसको लेने का काम कर रहे हैं, परंतु हल नहीं होता है। तो मतदाता ऐसा नहीं कि पहली बार में हिस्सेदारी करने जा रही है, तो हम 75 साल से करते आए हैं, 75 साल से हमने सरकार बदली है परंतु व्यवस्था नहीं बदली। हमारा ये सीधा सीधा कहना है कि मतदाता व्यवस्था बदलाव के पक्ष में जाए। और जो आप अंतर्राष्ट्रीयता की बात कर रहे हो, वो प्रदेश के चुनाव में उसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। हाँ, स्थानीय समस्याओं का, स्थानीय मुद्दों का प्रभाव दिखाई देता है, और उस पर जनता मतदान करती है। तो जनता को चाहिए कि व्यवस्था में बदलाव के लिए मतदान करे, न कि मतदान जो है हवा हवाई करे और किसी पार्टी के चेहरा को देख करके करे।
जी सर। सर, मेरा अंतिम सवाल है कि प्रदेश में 17 नवंबर को हर मतदाता मतदान करेगा, 22,33,000 से अधिक मतदाता जो 18 वर्ष से बाद के हैं, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उनको एक बार क्या संदेश देना चाहेंगे?
मतदाता से मैं यही कहने जाऊंगा कि जब कल 17 नवंबर को मतदान करने जाए, तो सबसे पहले लोकतंत्र को ध्यान में रखे, दूसरे प्रदेश को ध्यान में रखे, उसके साथ साथ प्रदेश के जनता के भविष्य को ध्यान में रखे, अपने भविष्य को ध्यान में रखे, रोजी रोटी आजादी चिकित्सा और शिक्षा को ध्यान में रख करके बटन दबाए, और पूरे हर्षो उल्लास के साथ मतदान पे जाए, मतदान बूथों पे जाए और जाकर के मतदान करे, और मतदान इसलिए करे कि लोकतंत्र मजबूत हो, मतदान इसलिए करे कि शराबी मत में हारे, मतदान इसलिए करे कि पैसा वाला चुनाव हारे, मतदान इसलिए करे कि माफिया चुनाव हारे, और एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक निष्पक्ष व्यक्ति, जनता का काम करने वाला कार्यकर्ता चुनाव जीते और लोकतंत्र मजबूत हो।
जी, तो ये थे आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जी। उन्होंने आप कैसे वोट करते हो इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। अनुप सर, मोबाइल वाणी को समझिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
जी, मोबाइल वाणी से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।